ॐ शांति, ॐ शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सत गुरु बाबा ने बहुत बड़ी बात एक सुनाई है। बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं आकर के निज ज्ञान देता हूं, निज ज्ञान, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान, निज ज्ञान किसको कहेंगे? संस्कृत में कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही सत्य है जो मुक्ति दिलाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाए, वही सच्ची विद्या है और वही भगवान आकर के सिखाते हैं। वो ज्ञान जिससे आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए। पर आज दुनिया में कई प्रकार का ज्ञान देते हैं। तांत्रिक विद्या भी होती है और उस तांत्रिक विद्या में क्या करते हैं, कई भटकती आत्माओं को अपने वश में करते हैं और फिर वो आत्मा किसी के मन को रीड करती है, ये क्या सोच रहा है, और फिर वो बताते हैं। तो ये तांत्रिक विद्या है। आज बाबा ने उसको नाम दिया है भूत विद्या, क्योंकि भटकती आत्माओं से वो लेते हैं। ये बहुत बड़ी मैली विद्या है और भगवान ये नहीं सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान कोई थॉट रीडर बन के हर एक के मन में क्या चल रहा है वही पढ़ते हैं। बाबा तो यहां तक कहते हैं, मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूं। एक बार कोई बाबा के सामने आया, व्यक्त बाप दादा के सामने, और कहा, बाबा मेरे बेटे ने दुकान खोली है, मैं उसका कब मुहूर्त निकालूं, कब मुहूर्त करूं? बाबा ने कहा, वो ज्योतिषी से जाके पूछो, बाबा उसके लिए नहीं आए हैं। बाबा आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो पावन कैसे बनेंगे? जब वो पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे। बाबा आशीर्वाद भी नहीं करते, हाँ बेटा आशीर्वाद हो, तुम्हारा ये हो जाएगा। आपको अपनी मेहनत से करना है, आपका अपना हिसाब किताब है, कर्मों का बहुत कुछ है। उस दिन यहां तक बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा का भी अपना हिसाब किताब है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, हरेक को चुकतू करना है। परंतु हाँ, योग बल से, बाबा की शक्ति से मदद अवश्य मिलती है, जिससे वो सूली से कांटा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार करते, कोई चमत्कार से नमस्कार नहीं है यहाँ, यहाँ तो निज ज्ञान है। तो आज बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 20/3/2025 है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। जो सुख है भी वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। दुनिया में तो क्या नहीं बताते, ऐसे कैसे धन कमाओ, ये करो वो करो, ऐसे आपका नाम होगा, मान होगा, शान होगा। बाबा ये सब नहीं सिखाते हैं। बाबा सत्य ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा को मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले। ये अल्पकाल के सुख के पीछे बाबा कोई विद्या नहीं देते या ज्ञान नहीं देते। ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, वो है सत्य ज्ञान जो अविनाशी ज्ञान रत्न है। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। और बातों में बाबा कहते हैं, दिल उठाते जाओ, निकालते जाओ, प्राम होते जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, हाँ इनमें दिल मत लगाओ, मुर्दों से क्या यारी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को इनसे न्यारा बनाते हैं। तो मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो, वही साथ चलेगी। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? कौन सी विद्या? उत्तर है भूत विद्या। भूत विद्या में बहुत कुछ आ जाता है, तंत्र मंत्र, पता नहीं क्या 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 नहीं, भटकती आत्माओं को वश करते हैं, क्या क्या करवाते हैं, बैली विद्या करते हैं, बाबा ये सब नहीं सिखाते हैं। भूत विद्या, किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भी भूत विद्या है। वो भटकती आत्मा है, क्योंकि उसको भी शरीर नहीं है, तो वो सब कैच कर सकती है, तो इसीलिए ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती है। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, अभी तो आपके मन में क्या चल रहा है मैं उसको पकड़ूंगा और फिर बताऊं तुम ये सोच रहे हो। बाबा भी नहीं सिखाता, ना हम बच्चे ये कोई सीखते हैं या किसको बताते हैं। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वो जानी जाननहार है, पर क्या जानता है? वो ज्ञान का सागर है, वो नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, और अपना परिचय देकर और क्या दे रहे हैं साथ में, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं, नंबर वार तो है ना। तो बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। किसके महावाक्य सुन रहे हैं? परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, महावाक्य सुन रहे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल किसको कहेंगे? अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं, तो अलग होने की बात ही नहीं उठती है। अलग रहे बहुकाल तो ये कोई परम धाम में नहीं है, परम धाम में तो आत्माएं साथ नहीं है। तो मूल वतन में जब आत्माएं हैं, तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं, तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग हो जाती है। परम धाम में जब आत्मा रूप में है, बाप के साथ है, तो अलग नहीं है ना। यहाँ आते हैं, जीव आत्मा बनते हैं, तब अलग होते हैं। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, आत्मा परमात्मा अलग रहे भूकाल, ऐसे ही गाते थे, अर्थ तो जानते नहीं थे। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़ते हो, जो पहले पहले बिछड़ते हैं माना वो सतयुग में आते हैं, वो पहले पहले बिछड़ते हैं। तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं, जो आदि में बिछड़ते हैं वही सबसे पहले मिलते हैं। तुम्हारी खातिर बाप को आना पड़ता है, तुम बाप से बिछड़ जाते हो तो बाप को आना पड़ता है। इसलिए कई बार बाबा पूछते हैं, बच्चों ने बाप को ढूंढा या बाप ने बच्चों को ढूंढा? बच्चे तो थक गए ढूंढ ढूंढ करके, आधा कल्प से ढूंढते रहे परमात्मा कहाँ है कहाँ है। तो ये बच्चों ने नहीं ढूंढा बाप को, किसने ढूंढा? अपना बाप ने ढूंढा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी एक बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। पढ़ा के क्या किया बाबा ने, स्वर्ग का मालिक बनाया। उस समय और कोई खंड नहीं थे, चले जाओ आज बाबा स्वर्ग में बहुत ले गए। उस समय और कोई खंड नहीं थे। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, देवी देवता धर्म, डीटी डिनास्टी भी कहते हैं। हाँ राजा ही है वहां, तो डीटी रिलीजन डीटी डिनास्टी भी कहते हैं। हर एक को अपने अपना रिलीजन होता है, हर एक अपने धर्म में अपने आप को समझता है मैं फलाने धर्म का हूँ, तो अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, लेकिन ये जो देह के धर्म है ये माइट नहीं है। कौन सा धर्म माइट है, कौन सा धर्म शक्तिशाली है? आत्मा का धर्म, शांति, ये सारे शक्ति है, ये सारी शक्ति है आत्मा की। और रिलीजन धर्म का मतलब ये धारणा, तो धारणा जब जीवन में है तो वही सच्चा धर्म है। तो बाबा कहते हैं हरेक को अपना रिलीजन होता है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, तब तो सारे विश्व पर राज्य करते थे। अगर उनमें वो आत्मिक ताकत नहीं होती तो सारे विश्व पर थोड़ी राज्य कर सकते होते। कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनास्टी, वो उनका ही धर्म था, देवी देवताओं का धर्म था। धर्म को न जानने कारण इरिलीजियस बन गए, अधर्मी बन गए। कई कहते हैं हम तो धर्म को मानते ही नहीं है, इरिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए, इतनी ताकत तुमको मिल जाती है, जो तुम आयरन एजेड इस कलयुगी नरक या कहो कि जैसे लोहे का ये पहाड़, आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड पहाड़ बना देते हो। इतनी ताकत तुमको मिल जाती है जो ये आयरन एज का पहाड़ निकालकर गोल्डन एज का पहाड़ लाते हैं, भारत को सोने का पहाड़ बना देते हैं। कहाँ लोहे का पहाड़ और कहाँ सोने का पहाड़ बाबा बना देते हैं। वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है, सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वो खुलेंगे, खुलेंगे वो पहाड़। सोने के सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों से ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। क्या माया मच्छंदर का खेल है, साक्ष ध्यान में वो गया और ध्यान में उसने देखा सोने के पहाड़, बहुत सोना 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 चारों ओर। उसको लगा मैं धरती पर ये सोना ले जाऊं, तो झोली भर दी सोने से और सोचा मैं ये ले जाऊंगा। और जब वापस ध्यान से उतरा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसने लगा मैं तो उसको लगा मैं बहुत सोना लेकर आया हूँ। तो बाबा कहते हैं सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वो खुलेंगे। तो बाबा कहे दिखाते हैं, ध्यान में देखा हम झोली भर कर ले जाते हैं, तो ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ भी नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है, शुरू शुरू में हमारी बहनें वो जाती थी ध्यान में ना, तो वहां देख स्वर्ग देखती थी, वो सोने के महल, सोना सोना सोना। हाँ तो सोचती थी ये सोना ले जाए, लेकिन नीचे उतरी तो कुछ भी नहीं। तो सोने तो बहुत देखती थी ना, इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। तो स्वर्ग को कहाँ देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि में अभी देख सकते हैं, अभी तो है नहीं। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि, पर इसमें कुछ रखा नहीं है, चलो गए स्वर्ग में, गए सोने के पहाड़ देखे, महल देखे, ये सब देखा, वापस आए तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें कुछ रखा नहीं, अभी ये देखने से दिल खुश हो गई और सोचा बस मैं स्वर्ग का मालिक बन जाऊंगा। नहीं, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ रखा नहीं है। नौधा भक्ति भी बहुत करते हैं, अब वो भक्त माला ही अलग है। नौधा भक्ति करते हैं ध्यान दीदार करने के लिए, अपने इष्ट का साक्षात्कार करने के लिए बहुत भक्ति करते हैं, तो हो जाता है इष्ट का साक्षात्कार। वो भक्त माला ही अलग है, पर ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वो फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए, किस लिए पढ़ रहे हो? राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। हमारा बुद्धि योग टीचर के साथ है और पढ़ाई के साथ है। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाता है, जो उसमें ज्ञान है बैरिस्टर में, वकील है, पढ़ा वकालत पढ़ाने वाला भी तो खुद वकालत की होगी ना, तभी तो वो पढ़ाता है। तो वकालत पढ़ा हुआ है तब पढ़ाता है। तो बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। अब ये बाबा खुद तो बनते नहीं है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं पढ़ा करके, लेकिन खुद बनते नहीं है। ये अंतर हो गया, ये वंडर है ना। तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेज फुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जानन हार है, पर जानी जानन हार का ये मतलब नहीं है कि वो सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर में अभी क्या चल रहा है। वो जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं, तांत्रिक विद्या वाले ये सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने लिए। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे, है ना निश्चय पक्का कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं, फिर और साथ में क्या गाते हैं? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण अलग नहीं, अकेले नहीं कहते, ब्राह्मण देवता माना ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी है, ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। कहानियां तो ढेर सारी है लेकिन भगवान अब डायरेक्ट बैठ पढ़ाते, कोई कहानियां नहीं सुनाते। भगवानों वाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, ये पढ़ाई है बाबा की, जो पढ़ाई है शिव बाबा जो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, 21 जन्मों की प्राप्ति जिस पढ़ाई से हो वो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। ये पढ़ाई, ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था, तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब ये धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म जब था, तो और कोई धर्म नहीं थे, दूसरे धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो अनेक धर्म है तो वो एक धर्म नहीं है। तो त्रिमूर्ति में क्या समझाते, कैसे शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा वो एक धर्म स्थापन करते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी वो धर्म है नहीं, गाते भी हैं। अभी क्या गाते हैं? मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस पर होई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते, नहीं कहते तो बुद्धि जब गाते हैं कि आप ही तरस पर होई, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो उस समय बुद्धि गॉड फादर की तरफ चली जाती है, भगवान की तरफ चली जाती है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है, रहम दिल कहते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। क्यों आते हैं बाप? सब प्रकार के दुखों से छुड़ाकर 100% सुख देने। कितना रहम करते, 100% सुख देना, ये कितना बड़ा रहम करना हुआ। बाप आते ही हैं तो कितना रहम करते हैं। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं, किसलिए आए हो? बाबा के पास आए हैं बाप से पूरा 100% सुख लेने। कैसे, किसके पास क्यों आए हो? बाबा के पास 100% सुख लेने, कितनी बड़ी बात है ये। वो है ही सुख धाम, ये है दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, वहां चले जाएंगे, अंतमति सो गति होगी। शांति धाम सुख धाम को याद करो। शांति धाम को याद करेंगे का मतलब क्या है? शांति धाम को याद करो मतलब कि जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शांति धाम में ऐसे तो जा नहीं सकेंगे, इस शरीर के साथ थोड़ी शांति धाम में उड़ेंगे, उसके लिए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ना पड़े तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए, लाइन क्लियर। किसी और की याद आई माना वो लाइन में डिस्ट्रैक्शन है, जैसे होता है ना रेडियो ऑन करते हैं दूसरों की भी आवाज होती है और की रेडियो स्टेशन की भी आवाज आती है तो कितना डिस्टरबेंस होता है। परंतु लाइन क्लियर माना केवल जहां लगाया वो रेडियो स्टेशन का वही आवाज आए। तो बाबा कहते हैं एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्प का लक्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। अल्प का लक्षण भंगुर सुख किसमें है? धन संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद, हवाई जहाज, न जाने क्या क्या समझते यही हमारा सुख है। पर बाबा कहते ये सब नहीं जा सकता, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं। यानी क्या चलता है? अविनाशी ज्ञान रत्न यानी ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, फिर बाबा हाँ भी कहते हैं, हाँ विनाशी धन भी साथ उनका जाता है। अभी विनाशी धन बहुत है, तिजोरियों में भरा पड़ा है, बैंकों में जमा है, चलो कईयों को लोन देकर रखा है, तो उनका ब्याज लेते या जो कुछ भी करते हैं वो धन है। तो बाबा कहते हैं वो धन भी साथ, वो धन नहीं साथ जाएगा। पर कौन सा धन साथ जाएगा? वो स्थूल धन भी कौन सा जाएगा? बाबा कहते हैं हाँ विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, अब बाबा को मदद किया ही नहीं और समझते कि मेरे पास तो बहुत धन है, बहुत धन है। फिर बाबा को भी राय देते हैं, बाबा आपको जब चाहिए तो मांग लेना। बाबा क्यों मांगेगा? वो तो दाता है, वो क्यों मांगेगा? देना हो तो आपको देना है ना, बाबा क्यों मांगेगा? मांगने से तो मरना भला। तो इसीलिए कई अभिमान से कह देते बाबा मेरे पास बहुत धन है, आपको चाहिए तो मांग लेना। तो बाबा मांगते नहीं है। तो हाँ विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं, बाबा हमारी ये कौड़ियां ले वहां महल दे देना, एक ईंट दे देना। तो ईंट हाँ, वो एक ईंट मैं देता हूँ बाबा, आप हमको महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं, जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, अब अमेरिकन लोग को या ब्रिटिशर्स को, अब इंडिया का कितना रुपया एक पाउंड होता है, 100 रुपए से भी ज्यादा एक पाउंड का जो कीमत है, अब एक रुपया एक पाउंड उनका और भारत के 100 रुपए। तो समझो कोई चीज कोई खरीदता है अमेरिकन का, अभी 80 से तो ऊपर हो गया अमेरिकन डॉलर भी, तो देखो अगर कोई भारत में आते हैं, अमेरिकन आते हैं, ब्रिटिशर आते हैं, अंग्रेज आते हैं, जिनका बहुत बड़ा पैसा है, वो भारत में कोई चीज लेते हैं और वो समझो या हम कहेंगे कि 80 रुपए का, वो 80 रुपया बस एक डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है, भले वो 20 रुपए का भी हो। तो बाबा भी कई बच्चों को भी अमेरिकन पैसेंजर कहते थे, बाबा कईयों से मंगवाते थे ना, बॉम्बे से चीजें मंगवाते थे या दिल्ली से चीजें मंगाते थे सौगात देने के लिए, तो बाबा उनसे पूछते थे कितना दाम, किस दाम में ले आए, तो बाबा इतना दाम, बाबा ने कहा तुम तो अमेरिकन पैसेंजर हो, तुमने हम वो बार्गेन किया, वो 100 रुपया कहते हैं तो तुम 50 रुपया से भी कम, वो 20 रुपया कहो देखो दे देगा आपको 20 रुपए में भी, तो कहाँ 100 रुपया का 20 रुपया, लेकिन जो अमेरिकन पैसेंजर होगा वो बार्गेन नहीं करना जानता है। हाँ वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं इतना नहीं, परंतु तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा अमेरिकन पैसेंजर्स को याद करते हैं। यहाँ भी कई आते हैं यहाँ सब इतना सस्ता है या इतना सस्ता है, क्योंकि विदेशों में तो बहुत महंगाई है, उसकी भेंट में भारत बहुत सस्ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे अमेरिकन लोग होते हैं बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीजें भी खरीद करते हैं, एंटीक्स कहते हैं ये तो 10,000 साल पुरानी चीज है, तो अमेरिकन लोग बहुत खुश होते हैं और वो इतना पैसा दे देंगे जबकि पता नहीं ऐसे ही हो टूटी फूटी। तो पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं, पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं, अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1,000 ले लेंगे, है पाई की चीज लेकिन अमेरिकन विदेशी है तो उनसे कितना गुना पैसा ज्यादा ले लेते हैं। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, वो अमेरिकन पैसेंजर पाई पैसे की चीज का इतना दाम देते हैं, तो बाबा कितना बड़ा ग्राहक है, बच्चे देते क्या है और बाबा ज्ञान देता है, तो वो अमेरिकन पैसेंजर हो गया ना, वो तो परम धाम का पैसेंजर है, परम धाम से आते हैं और पुरानी चीजें देते हैं कखपन और बच्चे को, बच्चों बच्चे देते हैं, बाबा तो महल देते हैं। तो बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, इसीलिए शिव का नाम क्या गाया गया है, भोलानाथ, वो भोलों का भोला भंडारी है, तो भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं, उनके लिए कहते हैं भर दो झोली, बम बम भोले भर दो झोली, भर दो झोली, ऐसे झोली लेकर के जाते हैं शंकर के पास, आकेंगे भर दो झोली। तो बाबा कहते हैं वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं, उनके लिए कहते हैं भर दो झोली। बाबा ने एक मुरली में कहा शंकर तो सारी झोली खाली कर देता है, विनाश कराता है तो सारी खाली कर देता है झोली, पर झोली भरता कौन है, शिव बाबा भरता है, स्वर्ग का मालिक बना देता है। अब बाबा कहते हैं, अब ये है बेहद का बाप, वो फिर शंकर के लिए कह देते हैं और फिर क्या दिखाते हैं शंकर के लिए, कि धतूरा खाता था, भांग पीता था, क्या क्या बातें बैठ बनाई है, कितनी ग्लानी कर दी है शंकर की भी। तो तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की, क्या है ये पढ़ाई, बिल्कुल शांत में रहने की, ये बतिया आदि भी जो जलाते हो शो करते हो वो भी इसलिए, क्यों जलाते, शिवरात्रि पर कितनी चमक धमक हम लोग भी करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्यों तुम जलाते हो ये बतिया आदि, ताकि लोग आकर पूछे शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो? इसलिए हम तम जब ये इतना लाइटें जलाते हैं, ताकि लोग पूछे शिव जयंती पर आप इतनी लाइट क्यों जलाते हो, तो उनको बताओ ये किसका जन्मदिन है, तो शिव बाबा का उनको परिचय मिल जाए। तो लोग आकर के पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो, शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया ये तुम जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे, कौन थे ये पूर्व जन्म में लक्ष्मी नारायण, अगर किससे पूछो तो किसको क्या पता, लेकिन बाबा कहते तुम जानते हो। ये आगे जन्म में जगत अम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी और फिर राज राजेश्वरी बनती है। लक्ष्मी पूर्व जन्म में ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा थी, फिर वो भविष्य में राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा दोनों में से, ज्ञान ज्ञानेश्वरी का। देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक है, बहुत बड़ा पद होगा इनका लक्ष्मी नारायण का। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, वो तो कहीं की मालिक नहीं थी, वो तो जगत की माँ थी। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, इनके पास क्यों जाते हैं? ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना, जितने बच्चे होते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है, बाबा के बच्चे बढ़ते जाते हैं, ब्रह्मा की भुजाएं बढ़ती जा रही है। जगत अम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी है, माँ लक्ष्मी को चलो 4 भुजा देंगे, पर लक्ष्मी नारायण जब इकट्ठे खड़े करते हैं तो लक्ष्मी नारायण को 2-2 भुजाएं होती है, पर जगत अम्बा को तो कितनी भुजाएं देते हैं। जगत अम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी है, उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। जगत अम्बा के पास बहुत आशाएं ले जाते हैं। हाँ, क्या क्या आशाएं ले जाते हैं, बच्चा दो, ये दो, वो दो, पता नहीं क्या क्या आशाएं लेकर के जाते हैं जगत अम्बा के पास, ये चाहिए वो चाहिए। और लक्ष्मी के पास जब जाते हैं तो और ज्यादा वो आशाएं नहीं मांगते हैं, उनसे केवल धन मांगते हैं, बस केवल धन। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाते हैं कि बच्चा दो, नहीं धन दो, वो तो सिर्फ धनवान है लक्ष्मी नारायण। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की भाषा ही मिलती है, ये भी किसको पता नहीं है कि जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए, वो तो स्वर्ग की भाषा ही देगी आपको जगत अम्बा। ये तो पढ़ाई है ना, जगत अम्बा क्या पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है जगत अम्बा, राजयोग। इसको ही कहा जाता है बुद्धि योग, तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप में लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना, अब सब तरफ से बुद्धि निकाल एक बाप में लगाना, यही राजयोग है। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। ब्रह्मा बाबा को फोटो पसंद नहीं थे, बाबा कहते थे किसका निकालोगे, शिव बाबा का तो निकलेगा नहीं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का भी नहीं निकलेगा, ये शरीर का ही निकलेगा, तो इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। उस समय तो फिर भी फोटोग्राफर होते थे, आजकल तो हर एक फोटोग्राफर बन गया है, हर एक फोटोग्राफर बताओ देखो फोटो 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 करते रहते हैं। बाबा कहते बाबा ही निकालने ही नहीं देते थे, बाबा मना करते थे। अब ये तो इनकी देह है ना, शिव बाबा को तो देह है ही नहीं, बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वो हथियाला कैंसिल, लौकिक में जो हथियाला था वो कैंसिल, काम चिता से उतर अब ज्ञान चिता पर बैठो, काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई कह न सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता है, तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन केवल एक ही बाप है, वो काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वो है रूहानी बाप, वो इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो, सब आत्मा ही है, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा। बाबा कहते औरों को समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। शब्द का मन मना भव, मन मेरे में लगाओ तो शिव बाबा की स्मृति आ जाएगी कि शिव बाबा कहते हैं मन मेरे में लगाओ। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं ये है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे हाँ दुनिया वाले क्या कहते हैं कि लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं, भारत नाम क्यों देते हैं, लड़ाई तो सारी दुनिया में होती है, भारत में ही क्यों बाबा क्यों महाभारत कहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं भारत में ही ये यज्ञ रचा हुआ है, ये यज्ञ शिव बाबा ने भारत में आकर के रचा है, इससे ही विनाश ज्वाला निकली है। हम बच्चे तैयार हो जाते हैं तो तैयार हो गए तो स्वर्ग चाहिए, तो फिर विनाश ज्वाला निकलती है। अभी तो भारत सबको कहता है शांति करो सुलह करो सुलह करो, टेबल पर आकर के बातचीत करो नेगोशिएट करो, अभी युद्ध का समय नहीं है। तो युद्ध का समय अभी क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। तो कब आ जाएगा युद्ध का समय, अभी नहीं है समय युद्ध का, तो कब आ जाएगा, जब बच्चे तैयार हो जाएंगे। अब बच्चे तैयार नहीं है तो क्या कहेंगे, अभी युद्ध का समय नहीं है, अब टेबल पर आकर बातचीत करो युद्ध मत करो, नहीं तो मैं बम गिराऊंगा हम ये करेंगे, कितनी धमकियां देते हैं ना, देते एक दो को, देशों का देशों के साथ झगड़ा ही है। तो बाबा कहते हैं तो विनाश ज्वाला यहां से निकली है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। तुम इस पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करोगे, तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए, इसलिए विनाश जरूर चाहिए। पर अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि अभी समय नहीं है युद्ध का। बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए, तो इस लड़ाई की जड़ विश्व युद्ध की लड़ाई की जो जड़ है, बाबा कहते हैं यहाँ से निकलती है जब बच्चे तैयार हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बहुत शास्त्रों में लिखा हुआ है ये, परंतु किसने कहा ये नहीं जानते, वो तो समझते श्री कृष्ण ने ये सब बातें कही, पर कही तो शिव बाबा ने है ना। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए, अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए, जो लड़ाई करने वाले झगड़े करने वाले मारा मारी करने वाले वो सब हमारे राज्य में नहीं होने चाहिए, तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल वर्ल्ड तो विनाश होता है, बुद्धि में याद रहना चाहिए कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को ये तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है। जब डीटी धर्म की स्थापना होती है, देवता धर्म स्थापन हो जाता है, तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। जब देवताएं हैं तो राक्षस नहीं है असुर नहीं है, सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। ये बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया है कि विष्णु फिर ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु। अब तुम समझ गए हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे, ये नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज मिल कैसे सकती है, जब केवल भगवान ही ये नॉलेज दे सकता है तो मनुष्य तो ये नॉलेज दे ही नहीं सकता। इसमें सारी है बुद्धि की बात, सब बुद्धि की बात। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो। बाबा मना तो करते नहीं, एक ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर ये बनेंगे, तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। हाँ, संगम युग पर ही केवल पढ़ाई चलती है, अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, न कलयुग में है न हम सतयुग में है, हम संगम पर हैं, तुम बाहर हो, दोनों युगों से अभी बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं हमारी नैया पार कर लो। हाँ, पार कर लो और पार करके ले जाओ, खाली पार कर लो नहीं पर ले जाओ साथ में। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कौन सी कहानी है? भगवान लेके जा रहा था, पार ले जा रहा था, तो बीच बीच में कई स्टेशन आए तो कई नीचे उतर गए, पानी पूरी खाने लिए, रसगुल्ला खाने लिए, या ये करने लिए, कुछ खरीदारी करने लिए। अब खरीदारी करने निकले, बाहर निकल आए उस बोट से, तो बोट चली गई, वो वहीं के वहीं रह गए। तो ये कहानी बताते हैं। वैसे हर धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में भी है, नोहा आर्क। भगवान ने नोहा को कहा कि एक बड़ी बोट ले लो और उसमें नर मादा नर मादा हर एक योनि का उसमें रखो, और फिर ये बोट ले चलो, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना क्योंकि पीछे तो विनाश होना है। तो परंतु कोई बीच में उतर गया होगा। तो ये कहानी भारत में भी बनाई है शास्त्रों में। अब बाप, तो बाबा कहते हैं ये कहानी बनी हुई है ना, कोई चल पड़ते हैं कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा तुमको बैठ सुनाता हूँ। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना, प्रजापिता यहाँ चाहिए, ब्रह्मा कहाँ जा कहाँ है, यहाँ चाहिए। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम मैं रखता हूँ। भगवान ने इनका नाम रखा, इन्होंने अपने आप नहीं रखा, शिव बाबा ने इनका नाम रखा ब्रह्मा। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो जो कलयुग अंत में है, फिर वही सत्युग आदि में जाएंगे। तुम्ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, हम ही पाठ बजाने पर सब तो बाबा कहते नहीं, सब सत्युग के आदि में तो आते नहीं। ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, इनकी गारंटी है कि ये सत्युग के आदि में आएंगे। और बाबा कहते बाकी किसी की गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनकी तो गारंटी है ना, इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर, अति सुंदर फिर श्याम। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं, गांवरे के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। बाबा भी लौकिक में गांवरे का ही छोरा था ना, अब वो गांव में रहते थे, हैदराबाद के भी गांव में रहते थे। तो गांवरे के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोरियां हैं, वो गांव के बच्चे बच्चे बच्चियां होते हैं ना, वो कपड़े भी क्या पहनते हैं, ऐसे नंगे घूमते रहते हैं, होते हैं तो छोरा छोरी कहते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं इस समय सब छोरे छोरियां हैं। बाबा किसको छोरा छोरी कहते हैं? जिनका माँ बाप नहीं है। अब माँ बाप होंगे तो बच्चों को ठीक कपड़े पहनाएंगे, वैसे घूमते रहते हैं। तो इस समय सब छोरे छोरियां हैं, ये क्योंकि भगवान को जानते नहीं तो छोरे छोरियां हैं। ये बेहद की बात है, उनको कोई नहीं जानते। शिव बाबा को कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है, हर एक के लिए सर्जन एक ही है, सर्जन एक ही है, सब मरीजों का सब रोगियों का ये है अविनाशी सर्जन। योग की अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की एलॉय यानी खाद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो एलॉय निकलेगा नहीं, खाद को निकालने के लिए बहुत तेज आग चाहिए, क्योंकि सोने में भी सच्चा सोना जो है उसको तो पिघलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो बाबा कहते यदि आग ठंडी होगी तो एलॉय निकलेगा नहीं, खाद निकलेगी नहीं। तो याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी हो ना। अच्छा मनमना भाव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए, बाबा की याद में थकना नहीं चाहिए। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। ये पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। हर मुरली में देखो कितने ज्ञान रत्न है, जिससे बाबा हम बच्चों को श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। रामा तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। वरदान माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। अगर सदा योग युक्त नहीं रह सकते मना बहुत बंधनों में गिरे हुए। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, जिम्मेदारी को बोझ थोड़ी समझना है, बंधन थोड़ी समझना है, वो तो खेल है। इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या करे बंधन है, क्या करे बंधन है कहते रहते ना, तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है आप निमित्त हो। एक तो बताया खेल समझो, दूसरा बाबा कहते जिम्मेवार बाबा है, बाबा पर छोड़ दो ना, आप क्यों बोझ उठाते हो, आप तो निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। उसके लिए क्या करना होगा, अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है। केवल इसी को अपवित्रता नहीं कहेंगे, दुख देना या पाप कर्म करना, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, डोलती है, डगमग होती है, लेकिन डूबती नहीं है सत्य की नाव। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है जो डगमग होगी। आप ईमानदार है, आप सच्चे सच्चाई पर है तो ये डगमग होगी आपकी नैया, लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो, सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के अनुभवी बनो, के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बाबा को भोग लगेगा, उसके पहले विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम सुनाती हूँ। डबल फॉरेनर्स रेज योर हैंड।